الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Prize bonds یا lottery bonds، اس میں فقہا کا اختلاف ہے. موجودہ زمانے میں بریلوی مکتبہ فکر کے مفتیان کرام اس کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ دیوبندی علماء کرام اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. بریلوی علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ انعام ہے، اور بیع و شرا کے اندر یعنی خرید و فروخت میں اگر کوئی اپنی طرف سے تبرعاً کوئی انعام دے دے، اضافی پیسہ دے دے، تو اس کو انعام کہا جائے گا، یہ ناجائز نہیں ہے، اور یہ بات اتفاقی ہے. لیکن سب سے پہلے جو چیز طے کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کیا یہ واقعی بیع و شرا ہے، یعنی یہ کوئی تجارت ہے، یعنی یہ معاملہ بیع و شرا کا ہے، تجارت کا ہے، لین دین، یا یہ قرض کی صورت ہے. تو اگر تھوڑی غور کیا جائے تو اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ اصلاً بیع و شرا نہیں ہے، بلکہ یہ خرید و فروخت کی جو اصطلاح ہے یہ محض مجازن استعمال کی جاتی ہے. اصل میں یہ ایک قرض کی صورت ہے جو ایک رسید کی صورت میں ہمیں مل جاتی ہے کہ آپ نے بینک کو یا کسی ادارے کو اتنے پیسے دے کر ایک رسید حاصل کر لی، جس کو بانڈ کہا جاتا ہے، دستاویز کہہ لیجیے، تمسک کہہ لیجیے. اس بانڈ کو خریدنا در حقیقت قرض دے کر بانڈ کو حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ بانڈ تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کو خریدا یا بیچا جا سکے. اس پر مبیع یعنی بیچے جانے والی چیز یا خریدے جانے والی چیز کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ تو ایک رسید ہے جو خود مقصود بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ قانوناً مال بھی نہیں ہے، اس کو زر بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس کو باقاعدہ کوئی لیگل ٹینڈر قرار دیا گیا ہو. لوگ اس کو بعض دفعہ سمن کے طور پر جو قبول کر لیتے ہیں وہ اس لیے کہ اس میں کیش ہو جانے کی آسانی ہے. اس لیے یہ اصل میں سند القرض ہے، یعنی بانڈ خود ایک سند ہے، ایک رسید ہے قرض کی. اب ایک اور دلیل جس کی بنیاد پر اس کو جائز قرار دیا ہمارے بریلوی بھائیوں نے وہ یہ کہ بانڈز پر ملنے والی جو اضافی رقم ہے، جس کو انعام کہتے ہیں، یہ اس کے ملنے یا نہ ملنے کی کوئی یقینی صورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بلکہ اکثر لوگوں کو نہیں ملتا، تھوڑے لوگوں کو مل بھی جاتا ہے. لہذا بانڈ پر ملنے والی اس اضافی رقم کو مشروط نہیں کہا جا سکتا کہ کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ یہ جس نے قرض لیا ہے یعنی مستقرض جسے کہیں گے، اس کی طرف سے ایک تبرع ہے، اس نے اپنے خواہش سے، اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے ایک تحفہ یا انعام کے طور پر یہ پیسہ دے دیا ہے. لیکن یہ بات بھی غور اگر کی جائے تو اتنی مضبوط نظر نہیں آتی، کیونکہ پرائز بانڈ پر ملنے والی اضافی رقم من حیث المجموع مشروط ہوتی ہے. اگرچہ یہ طے ہے کہ ہر ایک کو نہیں ہوگی، ہر ایک کو نہیں ملے گا، لیکن ایز اے ہول کتنا پیسہ ملے گا یہ طے ہے کہ جتنے انعامات دینے کا اعلان کیا جاتا ہے اتنی رقم دینا مستقرض پہ، یعنی جس نے قرض لیا ہے، جس نے آپ سے آپ کو بانڈز بیچے ہیں، جو بھی ادارہ ہے وہ، اس پر لازم ہے. تو یہ ایک درجے میں متعین ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ ان کو دینا ہی ہے، اتنی پرسنٹیج یا اتنا اس کا ایک پروپورشن، تو ایز اے ہول ان کو وہ دینا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مستقرض ہے یعنی جس نے یہ بانڈ بیچے ہیں، مجموعی طور پر جتنی رقم اس کو دینا لازم ہوتی ہے وہ رقم تمام قرض دینے والوں پہ تقسیم نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے کچھ کو دے دیتا ہے اور باقی کو کچھ نہیں دیتا. لہذا یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مشروط ہے اور یہ قانوناً واجب الادا بھی ہے. یعنی اگر کوئی ادارہ یہ کہہ دے کہ ہم یہ انعامی بانڈ لوگوں کو ہم نے بیچے ہیں، ہم اس پہ کوئی پیسہ نہیں دیں گے، اس دفعہ ہم کوئی انعام نہیں دے رہے، کیا ان کو اختیار ہے؟ نہیں، قانوناً وہ ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک اپنی جو پہلے سے اناؤنسمنٹ میں لکھا ہے یہ بات کہ وہ اتنا پیسہ دیں گے یا اتنا پرسنٹیج دیں گے یا اتنا انعام نکلے گا، یہ پاسبلٹی ہے، یا اتنے لوگوں کو ملے گا، یہ ساری چیزیں متعین ہیں، اتنے لوگوں کو دینا ان پر ضروری ہے، اور وہ نہیں دیں گے تو قانوناً مجرم قرار پائیں گے. رہی یہ بات کہ اس میں جوئے کا عنصر بھی ہے، तो ये बात थोड़ी सी तफसील तलब इस तौर पर है कि इसमें चूंकि रासुल माल जो असल है, जो असली पैसा लगाया गया है, वो बहरहाल महफूज रहता है, जबकि जुए में ऐसा होता है कि सारा बहुत कुछ मिल जाए या कुछ सारा लुट जाए, ख़त्म हो जाए। चूंकि असली माल जो है वो बिल्कुल फिक्स है और वो उतना ही वापस मिल जाएगा, तो इसलिए इसको जुआ इस तौर पर कहना तो ज़्यादा मुनासिब मालूम नहीं होता। लेकिन एक दर्जे में ये बात महसूस होती है कि जो शख्स भी ये प्राइस बॉन्ड ले रहा है, अब उसकी नियतों में से कोई दो नियतों में से कोई एक नियत होगी, यानी उसकी नियत या तो ये होगी कि इसके ज़रिए मैं कुछ मुनाफा हासिल कर लूँगा, तो गोया उसने एक दर्जे में ये ट्राई की है कि अपना पैसा फेंकूँ और इसके बदले में कुछ और पैसा हासिल करूँ। अब यहाँ आसानी यह है कि इसके नतीजे में अपना माल तो डूबने का ख़तरा ही नहीं है, तो एक दरवाज़ा और ज़्यादा खुल गया, बहुत सारे लोग और इजी फील करके इस इनाम के लालच में गोया कुरानदाजी में या अपने नाम को उसमें डालते हैं। तो इससे बहरहाल एक दर्जे में शक पैदा होता है जुए का, अगरचे शायद पूरी तारीफ़ उस पर ना आती हो, इसलिए कि जो माल है रासुल माल वो मुतरद्दिद बैनल वजूदी वल आदम नहीं है, यानी वो उसके पूरे ज़ाया हो जाने और सारे के या ज़्यादा मिल जाने के दरमियान में वो नहीं रहता, मुतरद्दिद नहीं होता इस तौर पर, इसलिए शायद पूरी तारीफ़ सादिक ना आती हो। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक आदमी अपने पैसे की सेफ्टी को सामने रखते हुए ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो और ज़्यादा उसकी माल हासिल करने की सूरत में अपने आप को इन्वॉल्व करे या इजाफी गोया एक मकरूज हासिल करने की कोशिश हो रही है कि कहाँ कहाँ मैं किन किन को कर्ज़ दे सकता हूँ जिनसे मुझे ज़्यादा पैसा मिलने का इम्कान हो। तो इस तौर पर एक तो सूद की शक्ल तो ये पूरी है ही हर सूरत में, इसमें ये सूद वाली बात है, लेकिन जुए की शक्ल ऐसी वाज़े नहीं है। लेकिन जो लेने वाला है मुस्तकरिद, वो जो यानी जो कर्ज़ जो हासिल कर रहा है, जो बेच रहा है प्राइस बॉन्ड, यानी उसकी तरफ से ऐसा है कि वो इतने लोगों में पैसा हासिल करने के लिए उनसे कर्ज़ लेता है, अपना काम चलाता है, काम हासिल कर लेने के बाद जहाँ भी वो लगाए, फिर जो भी वो रकम सूद से हासिल करेगा उस पर, उसमें से कुछ लोगों को दे देगा बढ़ा के और बाकी लोगों को उनकी असल रकम दे देगा। तो इस तौर पे ये तआवुन अलल मासी भी नज़र आता है, तआवुन अलल इस्मी वल उदवान, यानी गुनाह के कामों में तआवुन भी लगता है कि हम एक खाते पीते अमीर कबीर किस्म के लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को कि जिन्होंने अपना पूरा सेटअप बनाया हुआ है, उनके मिलियनेयर्स हैं वो लोग, हम उनको अपने माल में से कर्जा देते हैं इस लालच में, इस उम्मीद पर कि हमें उनसे कुछ शायद इनाम मिल जाए, अगरचे हम उनसे कहें ना, लेकिन हमारी चूंकि नीयत यही है, अब हमें मिले या ना मिले हमारी नीयत का तो वबाल शायद हम पर हो, और उनको हम पैसे दे रहे हैं, ये 100 लोगों ने दिए उनको हज़ार हज़ार पाउंड अपनी तरफ से, अब वो इन पैसे से सूदी कारोबार में लगाएंगे इसको, उससे मज़ीद पैसा कमाएंगे, और उस पैसे कमाने के बाद जो ये पैसा आपके पास बचा है इनमें से कुछ को दे देंगे, जो एक उन्होंने परसेंटेज तय की हुई है, क्योंकि ये वो हिसाब तो लगा चुके हैं, अंदाज़ा उनको है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें 1 मिलियन पाउंड अगर मिलेंगे तो उस 1 मिलियन पाउंड में से बिज़नेस में लगा कर हम, या बैंक में रख के सूदी या किसी और कारोबार में लगा कर हम, इससे 1 मिलियन पाउंड से हम इसको 1.5 मिलियन बना लेंगे मिसाल के तौर पर, या 1.25 मिलियन बना लेंगे, जो भी उस पर 1 लाख पाउंड ऊपर जो कमाएंगे उसमें से 10-15 लोगों को हम जो है हज़ार हज़ार पाउंड भी दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे और बाकी 70-75 हज़ार हमारी जेब में गए। तो गोया हम मौका दे रहे हैं ऐसे ही लोगों को कि वो गुनाह के ज़रिए अपने माल को बढ़ाएं, हमारे माल को बेस बनाकर। तो ऐसा लगता है कि इसमें तआवुन अलल इस्म, गुनाह के कामों में, सूद के कामों में एक तआवुन की सूरत है, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा ही होता है। तो गैर ज़रूरतमंद लोगों की इस तरह से एयानत करना गुनाह में, ये बहुत मुनासिब बात नहीं है, दीनी हिसाब से कोई ऐसी अच्छी बात मालूम नहीं होती। एक दूसरी नीयत लेकिन हो सकती है, वो ये कि पैसे कैश की सूरत में पास रखना आसान नहीं होता, बॉन्ड्स की सूरत में रहेगा तो ज़रा एक सेफ़ रहता है, और इस तरह ये कि जब ज़रूरत हो उसको निकाला जा सकता है। लेकिन जैसा कहा कि उसमें बहुत कम ऐसा होता होगा कि ये नीयत कोई रखता हो, क्योंकि एक लालच तो बहरहाल रहती है, और फिर ये कि अपने आप को ऐसी मशक्क़त में आदमी क्यों डाले, पैसा बहुत बड़ा माल, बहुत बड़ा फितना है कि अब आदमी बॉन्ड्स की सूरत में उसने रखा हुआ है, अब ये बॉन्ड अगर निकल आता है उसमें इनाम, तो बहुत मुश्किल है कि ये शख्स उस इनाम को फिर छोड़ दे अपनी मर्ज़ी से, ये सोच करके ये सूद है या गलत है, और या इसको सवाब की उम्मीद लगाए बगैर कहीं ऐसी जगह दे दे जहाँ इसका मसरफ हो सके। तो अपने आप को एक ऐसे इम्तिहान में डालने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल, अगर किसी की खाली ये नीयत हो कि इस तरह वो पैसा महफूज रख सकता है और वो ऐसा करे, तो महसूस होता है कि शायद इसमें गुंजाइश हो और इसको इसका जवाज़ निकले। लेकिन इसके अलावा तो हकीकत यही है कि इसमें खैर नज़र नहीं आती। एक सिस्टम को, सूदी सिस्टम को और परवान चढ़ाने और प्रमोट करने का ज़रिया बनती हुई लगती है बात। और जैसा कहा कि इसमें कर्ज़ देकर मज़ीद उस पर पैसा लेना, ये तो सूद है ही कतई तौर पर। अगरचे उसमें यानी आपकी नीयत है और दूसरे वाले पर ये आपने मुतय्यन कर दिया है कि वो उतना निकालेगा, आपने किया हो या उन्होंने ख़ुद किया हो, वही करते हैं अपने तौर पर ताकि लोगों में एक अट्रैक्शन हो, लोगों को इस तरफ माइल किया जाए। तो अगर ये सारी बातें न भी मानी जाए, कोई शख्स ये कहे कि नहीं इसके बावजूद हमें तो सिर्फ इनाम लगता है, तो भी इतनी बात ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है कि इसके जवाज़ की सूरत हो, जैसा कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा कह रहे हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा जवाज़ है तो कोई मुस्तहब अमल तो नहीं है, ऐसा काम तो नहीं है कि जिसके करने की बड़ी फजीलत आई हो, और दूसरी तरफ खदशात हों कि इसमें सूद और किसी दर्जे में गुनाहों पे और बुराइयों के कामों पर तआवुन की सूरत बनती हो, सूदी निज़ाम की और सूदी मईशत की फ़रोग़ का सबब बनती हो। और फिर ये कि जुए के भी बाज़, जैसे लोगों ने कहा कि बाज़ आइम्मा फुकहा की राय यह है कि मुफ्तियाने कराम की मौजूदा ज़माने में कि जुए की भी कोई शक्ल बनती है, वल्लाहु आलम, हो सकता है कि वो इतनी वाज़े न हो हमारे, हमें नहीं समझ में आई हो तब भी। तो अगर ये सारे खदशात हों तो एक समझदार आदमी को क्या करना चाहिए कि रिस्क जहाँ हो उसमें लगे, या जहाँ जान छुड़ा सकता हो बचा सकता हो अपने आप को बचाए। तो पैसा वैसे ही इस उम्मत के लिए फितना है, उसमें मज़ीद अपने आप को ऐसी चीज़ों में उलझाएं कि जिसमें सुबह शाम हफ्ते में 2 हफ्ते में अपने रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं, पता नहीं मेरा नाम निकला कि नहीं निकला, बुरा हाल है, बुरी चीज़ है इस लिहाज से कि आदमी को दुनिया में उलझाता है। और दुनिया की मोहब्बत हलाल तरीके से आदमी करे, ज़रूरत कमाने के लिए, माल कमाने के लिए जितनी उसको चाहिए उसके लिए हलाल मेहनत करे। पैसे पर पैसा कमाना, किसी को देकर उस पर उम्मीद लगाना कि पैसा और बढ़ जाए, ये मुनासिब नहीं है। तिजारत में लगाइए, तिजारत में लगाइए और उसके नतीजे में पैसा कमाइए, इंशाअल्लाह ताला हलाल तरीके से बरकत वाला पैसा होगा, उसमें फ़ायदा होगा। तो थोड़ा पैसा इस तरीके से कमाना अपने आप को, ये कोई मुनासिब सूरत नहीं है कि आदमी दुनिया के अंदर उलझता चला जाए, तो कहाँ जाके फिर रुकेगा। इसलिए मादा परस्ती के इस दौर में अपने आप को ऐसे फितनों से, ऐसी मुश्किलात से बचाने की कोशिश करना चाहिए, सादगी से रहने का, कम से कम पे गुजारा करने की आदत होनी चाहिए, हलाल तरीके से। अल्लाह बहुत माल दे और बरकतें दे और तरक्कियात दे, बहुत अच्छा है, लेकिन हलाल तरीके से, इसमें कोई क्वेश्चन ना रहे। तो जब एक उसूल ये भी है फिक्र का कि जब एक चीज़ इस तरह से मुश्तबा हो कि उसमें हराम होने का और हलाल होने का, जायज़ होने का और हराम होने का खदशा हो, कि कुछ लोगों की ये राय हो कुछ की वो राय हो, तो भी एहतियात की राय पर अमल करना चाहिए। उसमें हराम को प्रायोरिटी दी जाती है, जो चीज़ इसको हराम करने वाली हो उसको जो है ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, इसलिए कि हम एक रिस्की खेल ना खेलें। क्योंकि कोई ये तो नहीं कहता कि जिसने प्राइस बॉन्ड नहीं लिया उसने कोई गोया कोई गुनाह किया है। तो और ऐसे लोग ज़्यादा हैं कि जो ये कहते हैं कि प्राइस बॉन्ड हराम है, तो इसलिए एहतियात पे अमल करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। अल्लाह सुबहानहु ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।